अध्याय 11, जिसके आगे राह नहीं। 20 वर्षों के इतिहास में छायावाद ने क्रमशः काफ़ी रूप बदला। 1935-36 ईस्वी तक जाते जाते छायावाद वही नहीं रह गया जो 1916 या 18 में था। छायावाद के इस क्रमिक विकास की ओर स्वयं छायावादी कवियों तथा आलोचकों ने भी ध्यान दिया। अन्य काव्यधाराओं की तरह छायावाद में भी क्रमशः भावों का प्रसार हुआ और भावना तथा रूप विन्यास में प्रवणता आई। प्रकृति प्रेम से जिसका आरंभ हुआ था, अंत तक जाते जाते उसके प्रेम का प्रसार मानव जीवन तक हो गया। आंखें खुलते ही जिस पंत ने बाल विहंगिनी से प्रथम रश्मि के विषय में जिज्ञासा की थी, छाया के प्रति अपना कुतूहल व्यक्त किया था, तारों से मौन निमंत्रण प्राप्त किया था और बादलों का छायामय खेल मेल देखा था, उन्हीं का मन 32 तक जाते जाते मानव जीवन के दुख सुख से उन्मन्न रहने लगा। आरंभिक प्रणय का भी प्रसार हुआ और प्रौण वय के अनुकूल प्रेम भावना में व्यापकता आई। जिस निराला ने जूही की कली के साथ केली से काव्य संसार काव्य आरंभ किया था, आगे चलकर 35 तक आते आते तुलसीदास की भांति रत्नावली से मुक्त होकर देश काल की चिंता करने निकल पड़े। जो पहले यमुना के प्रति अधिक स्वप्नशील थे, वही वन मेला में देश और समाज के विषयों की चिंता करने लगे। सन 24 की रेखा में उन्होंने बड़ी उमंग के साथ लिखा था कि प्रथम जीवन में जीवन ही मिला मुझे चारों ओर। उन्हें को इस मरण दृश्य भी आगे चलकर देखना पड़ा। जिनके लिए कभी संपूर्ण प्रकृति और सृष्टि ही मनोहरा थी तथा उसी में दिन रात डूबे रहते थे, उन्हीं को फिर सरोज की स्मृति में आंसुओं से तर्पण करना पड़ा। सौंदर्य के उपासक को राम की शक्ति पूजा का विधान करना पड़ा। जो कभी आकाश की चांदनी को ही सब कुछ समझते थे, उन्हें अब धरती का नरगिस श्रेष्ठ प्रतीत होने लगे। तात्पर्य यह कि निराला के काव्य का भी विस्तार हुआ। प्रकृति प्रेम और निजी प्रणय की सीमा से निकलकर वे जीवन संघर्ष में आए और उसमें लड़ते हुए उन्होंने अनेक अनुभवों को काव्य का रूप दिया। जो प्रसाद पहले आंसू में ही डूबे रहे, उन्हीं को कुछ ही वर्षों बाद आंसू के द्वितीय संस्करण में अपनी पीड़ा को मंगलमय ज्योति का रूप देना पड़ा। उन्होंने अपने आंसुओं को विश्व के आंसुओं में मिला दिया और यह मंगल कामना की। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुखमय जीवन में बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। अंत तक आते आते छायावाद का दृष्टिकोण कितना व्यापक हो गया, यह कामायनी में उठाई गई समस्याओं से प्रकट होता है। आरंभिक दिनों में तो सौंदर्य मुग्ध और प्रेम लुब्ध मन के लिए कोई समस्या ही नहीं थी। परिस्थितियों के संघर्ष में आने पर छायावादी कवियों को पता चला कि जीवन बहुत व्यापक है, उसमें प्रेम ही नहीं संघर्ष भी है और यह संघर्ष बहुत बड़े पैमाने पर जीवन के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में छिड़ा हुआ है। कामायनी तक जाते जाते कवि को यह सब अनुभव होने लगा। निजी आंसुओं के निहार में वंदनी रहने वाली महादेवी ने रश्मि के आलोक में जीवन की व्याप्ति का दर्शन किया और प्रखर ताप को झेलते हुए सांधे क्षणों तक जाते जाते समाजव्यापी दुख की अनुभूति करने लगी। उनकी नीरभरी दुख की बदली का दुख केवल प्रणय व्यथा ही नहीं है, उसमें अनेक प्रकार के सामाजिक असंतोष घुले मिले हैं। इस प्रकार छायावाद के भाव जगत और विषय वस्तु का क्रमशः विस्तार हुआ। विस्तार के साथ छायावाद के भाव विचारों और भाषा में प्रौणता भी आई। पल्लव के कच्चेपन की तुलना में गुंजन अधिक प्रौण है। पल्लव में किशोर कल्पना है तो गुंजन में प्रौण अनुभूति है। यही अंतर परिमल और अनामिका, आंसू और कामायनी तथा निहार और निर्जा में भी है। इन दोनों छोरों में रूप विन्यास संबंधी भी अंतर है। पल्लव में कल्पना का जो अतिव्यय है, वह गुंजन तक जाते जाते कुछ संयत हो गया। गुंजन में पल्लव की अपेक्षा मितव्ययिता है। इसी तरह छायावाद के अंतिम कृतियों में कोरे चमत्कार की अपेक्षा गंभीर भावानुभूति तथा छंद वैचित्र की अपेक्षा जीवन का सहज संकेत है। आरंभ की सी 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 की सितकार बाद में कुछ कम हो गई। मेद छट गया, मांस बढ़ गया। जो बात पहले भारी घटाटोप और आडंबर के साथ 10-20 उपमाओं के सहारे कही जाती थी, वही पीछे अत्यंत सहज ढंग से एक दो उपमाओं में अथवा यूं ही कह दी गई। अनामिका के यह सच है, कहा जो न कहा, तुम्हें खोजता था मैं पा नहीं सका, पथ पर मेरा जीवन भर दो, बादल गरजो आदि गीतों को गीतिका में सखी बसंत आया, तुम कौन तम के पार रे कह, प्रिय यामिनी जागी आदि से मिलाकर देखने का यह अंतर स्पष्ट हो जाता है। कहाँ तो सन 35 के इस गीत की सादगी, संक्षिप्तता और प्रभाव की तीव्रता। बार बार हार हार मैं गया, खोजा जो हार छार मैं नया, उड़ी धूल तन सारा भर गया, नहीं फूल जीवन अभिकच है यह सच है। और कहाँ गीतिका के इस गीत की अतिशय अलंकृति, आवृत्ति सरस उर सरस सिज खिले, केसर के केश कली के छुटे, स्वर्ण शश अंचल पृथ्वी पर लहराया, सखी बसंत आया। गुंजन में जिस वातावरण को पंत ने पत्रों के आनत आधरों पर सो गया निखिल वन का मरमर ऐसी एक पंक्ति में बांध दिया, उसी को पल्लव में संभवतः 4-6 उपमाओं के बिना न कहते। इस तरह छायावाद के क्रमशः व्यापक और प्रौढ़ होने का आभास मिलता है। आलोचकों ने छायावाद के इस विकासशील पक्ष पर काफी प्रकाश डाला है, परंतु छायावाद के ऐतिहासिक विकास का एक दूसरा पक्ष भी है, जिसको स्पष्टता के साथ प्रायः नहीं रखा गया है। सच पूछा जाए तो छायावाद की इस प्रौढ़ी में ही उसकी रूढ़ भी नहीं थी। एक तथ्य की ओर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता कि छायावाद का उदय ही स्वच्छंदतावादी कविता के अत्यंत विकसित और प्रौढ़ रूप में हुआ। श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी ने स्वच्छंदतावाद की जिस काव्यधारा का प्रवर्तन किया था, वह अपने अत्यंत विकसित रूप में पंत निराला प्रसाद का काव्य बनकर प्रकट हुई। इसलिए जिसे हम छायावाद का सशक्त प्रौढ़ और विकसित रूप कहते हैं, वह उसके उदय काल से ही मिलता है। उच्छ्वास और आंसू में पंत ने जो लिख दिया, उसकी काष्ठा तक फिर नहीं पहुंच सके। निराला के परिमल में जो ताजगी, विद्रोह और विविधता मिलती है, वह फिर नहीं दिखाई पड़ी। प्रसाद और महादेवी का विकास यद्यपि बहुत धीरे धीरे और पंत निराला से थोड़ा भिन्न हुआ है, क्योंकि छायावाद का रंग उन पर देर से चढ़ा, फिर भी प्रसाद के आंसू में अनुभूति की जो तीव्रता है, वह बाद के प्रौण चिंतन में दब गई। यही स्थिति महादेवी की भी आरंभिक कविताओं की है। प्रगीत रचना के विषय में यह विचित्र बात है कि जीवन के आरंभिक दिनों में भावुकता के कारण प्रायः ऐसी रचनाएं निकल पड़ती हैं जिनको फिर प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। छायावाद की आरंभिक कविताओं में से कई श्रेष्ठ रचनाएं ऐसी ही हैं, लेकिन इन रचनाओं की श्रेष्ठता का कारण केवल किशोरावस्था अथवा कोरी आकस्मिकता नहीं है, इसका कारण सामाजिक है। छायावाद की आरंभिक कविताओं में प्राचीन रूढ़ियों के प्रति जो विद्रोह है, अपने परिवेश से जो तीव्र असंतोष है, व्यक्तित्व के विकास की जो आकांक्षा है, कल्पना के पंखों पर उड़ने की जो सहज उमंग है, प्रकृति के साहचर्य का जो सुख है, प्रेम की अनुभूति में जो मानवीयता है, विचारों में जो आदर्श है और रूप विन्यास के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करने का साहस है, वह सब एक एक करके कुछ ही दिनों में विलीन होने लगा। जिस छायावाद का आरंभ सामाजिक स्वाधीनता के लिए व्यक्ति के विद्रोह से हुआ, उसी का पर्यावसान समाज से व्यक्ति के पलायन में हुआ। सभी छायावादी कवि अंत तक जाते जाते या तो अपने जीवन की पराजय अनुभव करने लगे अथवा समाज को अपना शत्रु समझने लगे। विप्लव स्वर में बादल राग गाने वाले निराला ने सरोज स्मृति में बड़ी व्यथा के साथ कहा, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। विरोधी शक्तियों से लड़ते लड़ते निराला घबरा चले थे। राम को शक्ति पूजा राम की नहीं, निराला की शक्ति पूजा है। अंतर इतना ही है कि राम को तो शक्ति मिल गई, लेकिन निराला को न मिली। इस प्रसंग में जैसा कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, नोटेड कामा, कवि के जीवन में संघर्ष ही सत्य रूप में आया है, विजय की कल्पना मात्र रही है। राम की शक्ति पूजा में निराला के राम की जो करुण असमर्थता है, वह उस युग के व्यक्ति की असमर्थता है। उस दिन के राम रावण युद्ध में राम की हार नहीं हुई थी, आधुनिक मध्यवर्गीय राम की हार हुई थी, क्योंकि रावण की ओर से स्वयं शक्ति लड़ रही थी। राम वार तो करते थे, लेकिन सभी प्रहारों को शक्ति विफल कर देती थी। यह शक्ति स्वयं राम की शक्ति थी जो अब रावण के पक्ष में हो गई थी। यह निराला का स्वयं अपना वर्ग मध्य वर्ग था, जो अब पुराणपंथी सामंती दल से मिल गया था। उस राम को जरा जड़ रावण से भय न था और न उसकी परवाह ही थी, लेकिन उस अपनी शक्ति का क्या करते। अपनी विवशता बतलाते हुए वे कहते हैं, पश्चात देखने लगी मुझे बध गए हस्त, फिर खिंचाना धनु मुक्त ज्यों बधा मैं हुआ त्रस्त। राम मुक्त होते हुए भी अपनी शक्ति की दृष्टि से बधे थे। मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी लोगों की वैयक्तिक स्वाधीनता की सीमा पर ये पंक्तियां कितना तीखा प्रकाश डालती हैं। मुक्त होकर भी वे अलक्षित रूप से बधे हुए हैं और हर तरह से बधे हुए हैं। इसीलिए विभीषण के अनेक वीर वचन सुनने पर भी बोले रघुमणि मित्रवर विजय होगी न समर, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। अंत में जाम्बवान की राय से वे शक्ति की आराधना का संकल्प करते हैं। संघर्ष में पराजित व्यक्ति आराधना की ओर उन्मुख होता है और वह आराधना वे किसकी, उसी अपनी शक्ति की जो अब रावण का साथ दे रही है। जो होना चाहिए था वही हुआ, आराधना के समय भी शक्ति धोखा दे गई। तब पराजित हृदय शक्ति को धिक्कारने की जगह अपने जीवन और साधन को ही धिक्कारने लगा। दिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, दिक साधन जिसके लिए किया सदा ये शोध। उन्हें दुख था तो केवल एक ही बात का कि जानकी का उद्धार न हो सका, अपने शक्ति को वे मुक्त न कर सके। अपने व्यक्तित्व की जिस स्वाधीनता के लिए व्यक्ति ने पुरानी सामंती व्यवस्था से लड़ाई मोल ली थी, उसे उम्मीद थी कि वह स्वाधीनता मिल जाएगी, अब उसकी आशा टूट गई। परंतु इतने पर भी उस विश्वास हृदय का मोह भंग न हुआ। उसने सोचा कि शक्ति शायद परीक्षा ले रही है, वे भला कभी धोखा दे सकती है। और तब भक्त व्यक्ति ने आत्म बलिदान के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का संकल्प किया। राम ने अपनी एक आंख निकालने के लिए बाण निकाला। इस मना स्थिति में उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि शक्ति स्वयं उपस्थित हो गई है और उन्होंने भक्त का हाथ पकड़ लिया है और विजय का वरदान दिया। पश्चात उन्हें अनुभव हुआ कि शक्ति उनके बदन में आकर लीन हो गई। आराधना से निराला को कितनी शक्ति मिली यह तो उनका परवर्ती साहित्य ही बतलाता है, किंतु इतना निश्चित है कि 36 तक आते आते उनका मोह भंग हो गया था और तमाम आशावाद के बावजूद वे भीतर ही भीतर पराजय अनुभव करने लगे थे। 1937-38 के आसपास लिखी हुई यह पंक्तियाँ, मैं जीर्ण साज बहु छिद्र आज, मैं पढ़ा जा चुका पत्र न्यस्त, विहक के वे पंख बदले किया जल का मीन, हो गया व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार, बार बार हार मैं गया, खोजा जो हार छार में नया, उड़ी धूल तन सारा भर गया, नहीं फूल जीवन अभिकच है यह सच है। ऐसा क्यों हुआ, यह पराजय क्यों, निराला के मुख में से 40 में कारण सुनिए। मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की संध्या वेला। छायावाद का सारा स्वतंत्र संघर्ष अकेले व्यक्तित्व का था और संगठित सामाजिक शक्ति के विरुद्ध अकेले अकेले लड़ने का यही परिणाम होता है। ऐसे संघर्ष में कहीं विजय मिलती है, समाज से लड़कर अकेले रहने से क्या स्वाधीनता मिलती है। व्यक्तित्व को जकड़ने वाले एक समूह से अलग होकर अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए किसी अन्य सामाजिक समूह से रागात्मक संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है। यदि मध्यवर्गीय व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व की स्वाधीनता के लिए सामंती व्यवस्था से लड़ाई की तो अपने मध्यवर्ग के साथ उसका गहरा संपर्क होना आवश्यक था। आरंभ में वह अंतः संगठन अवश्य था, परंतु जिस समाज व्यवस्था में योग्यतम ही जीता है का मात्र न्याय चालू हो वहाँ का भी संगठन टिक सकता है। भेड़ियों में दोस्ती कहीं हुई है, विघटन अनिवार्य था और वह हुआ। मध्यवर्ग का बुद्धिजीवी व्यक्ति व्यवसायियों तथा लंबी तनख्वाहों वाले के बीच दूध की मक्खी हो गया। मिली हुई स्वाधीनता खाली हो गई, बर्तन तो मिला लेकिन उसमें पीने के लिए पानी नहीं मिला। ऐसी स्थिति में होना तो यह चाहिए था कि बुद्धिजीवी व्यक्ति अपने अकेलेपन को उभरने वाली नई सामाजिक शक्ति किसान मजदूर से जोड़ता और उन्हीं से अपनी रिक्तता दूर करता, परंतु छायावादी कभी उस समय तक ऐसा न कर सका। वह अपने एकाकीपन का भीषण रुदन करता रहा। पंत की कविताओं से भी प्रायः इसी विकास क्रम का पता चलता है। गुंजन तक आते आते उनमें एक अभूतपूर्व उन्मन विषाद छा गया। संध्या के एक तारा में उन्होंने अपने जीवन का चित्र दिखलाई पड़ता है, उन्हें भी लगता है निखिल विश्व निर्जन। वे अपने को निष्फल इच्छा से निर्धन अनुभव करते थे। वे बड़ी तीव्रता के साथ अनुभव कर रहे थे कि एकाकीपन का अंधकार दुसा है उसका मूक भार, इसके विषादकारी मन पार। यह अकेलापन निराला के अकेलेपन से थोड़ा भिन्न है। निराला जीवन भर एक योद्धा की तरह रहे, उनके यहाँ युद्ध की चर्चा अक्सर दिखाई पड़ती। सरोज स्मृति में हारता रहा मैं स्वार्थ समर के अलावा भी वह शरछीप वरण कौशल होता रहा। राम की शक्ति पूजा, वनवेला आदि लंबी कविताओं के अलावा छोटे छोटे गीतों में भी प्रायः युद्ध के प्रतीक अथवा संकेत आते हैं। इसलिए निराला का अकेलापन भी एक युद्धरत सेनानी का अकेलापन है। अपने जीवन के छोटे से संघर्ष के माध्यम से ही वे समाज के व्यापक संघर्ष का अनुभव कर रहे थे। उन्हें साहित्य में जो संघर्ष करना पड़ा वह सामाजिक संघर्ष की छाया थी। उसके लिए आर्थिक क्षेत्र में भी उन्हें कम लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। धार्मिक और नैतिक क्षेत्र में भी वे विरोधों का सामना करते हुए धारा के विपरीत चलते रहे। इसलिए उनके विषाद और अवसाद में अनेक प्रकार के असंतोष घुले मिले हैं। उनका एकाकीपन केवल जीवन सहचरी के अभाव का सूचक नहीं है। निराला के विपरीत पंत प्रायः प्रेम संग्राम के सिपाही रहे, इसलिए उनकी सामाजिक प्रतिक्रिया प्रायः ऐसे ही प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त हुई। एक तारा का एकाकीपन उच्छ्वास आंसू और ग्रंथि के ही असफल प्रेम की तीव्र अनुभूति है। परंतु पल्लव ग्रंथि काल में कवि ने जहाँ विद्रोही की तरह अपने असंतोष को खुले ढंग से व्यक्त किया, गुंजन में उसे बौद्धिक मर्यादा और गंभीरता के आवरण में ढककर अपने मन को समझौते का पाठ पढ़ाना शुरू किया। कहाँ तो उस छवास पे उन्होंने लिखा था कि निरपराधों के लिए ही तो आहा हो गया संसार कारागार है, और आंसू में और विकट स्वर में कहा कि हृदय रो उनको है अधिकार, हृदय रो यह जड़ स्वेच्छाचार। फिर ग्रंथि में अपने वृद्ध उपदेशकों को फटकारते हुए कहते हैं, शिथिल दर्शन ज्ञान जिम्भा की आलस, वृद्ध अनुभव की सिकोड़ वृथा मुझे। सांत्वना मत दो विरस उपदेश के, उपल मत मारो न बहलाओ हृदय। और कहाँ एक तारा का मुख भार, अंतर्निहित असंतोष और फिर आदर्श की मृग मरीचिका में मन को बहलाना। एकाकी तारे के बारे में वे चाहे जितने जोर से कहें कि जानता नहीं वह छंद बंद, वह रे अनंत का मुक्त मीन, लेकिन वह अपने एकाकीपन के अंधकार में बुरी तरह बंधा हुआ है। उसे वे अपने असंग सुख में विलीन कहकर अनासक्ति का चाहे कितना बड़ा पाठ पढ़ाए, लेकिन वह अपने आसक्ति को भूलने में असमर्थ। संभवतः इसीलिए उन युक्तियों को बेकार होते देख पंत अंत में कहते हैं कि लो देखो जगमग जगमग नवका आंगन, लद गया कुंद कलियों से घन। इसीलिए इन्हें कुंद कलियों के साथ कुल मिलकर अपना मन बहलाओ। कल्पना के लोक में चाहे जितनी कुंद कलियाँ आ जाएं, लेकिन वास्तव में तो वह तारा एकाकी ही है। वायु समाज की सत्ता को सोचकर वह उनका एकाकीपन थोड़ी देर के लिए भले ही भूल जाए, लेकिन उसके साथ आंतरिक लगाव के बिना सामाजिकता का वह क्षणिक आनंद टिकाऊ नहीं हो सकता। आगे भी पंत ने संसार को देखकर अपने निजी अभावों को भूलने की कोशिश की, लेकिन वास्तविक संपर्क के बिना वह आदर्श सदैव हवाई ही रहा, और इसीलिए उससे न तो उन्हें तृप्ति मिल सकी और न पाठकों को। प्रसाद में भी यह परिवर्तन अपने ढंग से हुआ। उन्होंने अपने अभावों को शुरू से ही रसवादी रंग दिया। अपने इंद्रिय बोध के प्रायः वे अतीन्द्रिय स्तर पर व्यक्त करते रहे। कुछ दिनों तक तो यह अतीन्द्रिय अनुभूति चलती रही, परंतु धीरे धीरे उस लोक में भी पीड़ा की वास्तविकता असह्य होने लगी। तब मन को भुलाने के लिए उन्होंने मधु और मद का सहारा लिया, और इसी को तर्कसंगत परिणति तक ले जाकर उन्होंने चेतना और संवेदना को ही समाप्त कर देना चाहा। चेतना लहर न उठेगी, जीवन समुद्र थिर होगा। जब तक चेतना है तब तक पीड़ा की अनुभूति है, इसीलिए पीड़ा से मुक्त होने के लिए चेतना को ही समाप्त कर देना चाहिए। आरंभ में मद और मधु के द्वारा उन्होंने चेतना को निष्क्रिय करना चाहा, लेकिन जब देखा कि यह स्थायी इलाज नहीं है तो चेतना की लहर का उठना ही समाप्त कर देना चाहा। यथार्थ की पीड़ा से भागने के लिए प्रसाद ने अचेतनता के अतिरिक्त सागर के निर्जन तट पर भी भाग जाना चाहा। होश में तो यह भागना हो नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने आकांक्षा व्यक्त की कि या तो कोई उन्हें नशे में बेहोश करे यहाँ से ले जाए, अथवा भुलावा देकर। अपने नाविक से वे कहते हैं कि ली चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, उस जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोला हल्की यवनी रे। अचेतनता और पलायन, ये दोनों प्रवृत्तियों का समन्वित रूप कामायनी में है। कामायनी में जो बुद्धि का विरोध किया गया है उसके मूल में अचेतनता का वही पुराना सिद्धांत है। बुद्धि तो विवेक देती है, उसके रहने पर तो संसार की समस्याएं समझ में आने लगेंगी, और नहीं तो उसके प्रति कम से कम जागरूकता तो अवश्य बनी रहेगी। इसलिए सांसारिक झपट से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि बुद्धि का बहिष्कार करो और उसके स्थान पर हृदय को प्रधानता दो। इसका मतलब यह है कि मन के चिंतन क्रिया को बंद करके केवल इच्छा पर ही का ही प्रसार किया जाए। विवेक को ताक पर रखकर सब में प्रेम का प्रचार किया जाए, सब में समरसता फैलाई जाए, सब में सहृदयता की भावना भर देने से सब ठीक हो जाएगा। संसार में समरसता और सहृदयता का संदेश देने वाली श्रद्धा अपने तो अपने साथ साथ मनों को भी लेकर कैलाश पर भाग जाती है। इतना ही नहीं, प्रसाद उन दोनों के पुत्र मानव के नेतृत्व में समाज के और लोगों को भी कैलाश यात्रा पर भेज देते हैं। यह कोई आकस्मिक बात नहीं है। बुद्धि विवेक को वाद देने वाले तथा हृदयवाद का प्रचार करने वाले अंत में समाज से भागकर इसी तरह एकांतवास करते हैं और दूसरों को भी काम धंधा छोड़कर अपने यहाँ आने का उपदेश देते हैं। इसी तरह वे संसार में समानता और प्रेम का राज्य प्रतिष्ठित करने का सपना देखते हैं। इसी चिंतन प्रक्रिया की तर्कसंगत परिणति अबुद्धिवाद है। अबुद्धिवाद को मानने पर प्रसाद की ही तरह आदमी वैज्ञानिक विकास का विरोध करता है। झंझटों से बचने का उपाय है सरलता। प्रसाद साहित्य में लगभग वही आदर्श प्रचारित करते रहे थे जो राजनीति में अंतिम दिनों गांधी जी कर रहे थे। रामधुन और शिव का तांडव दोनों से एक ही ध्वनि निकलती है। विज्ञान का विरोध, प्रेम का प्रचार, हृदय परिवर्तन और कैलाश निवास सब कुछ वहाँ भी मौजूद है। संतोष की बात है कि प्रसाद के यहाँ ये चीज़ें बीज रूप में नहीं, इन्हें तर्कसंगत परिणति तक भी न ले जा सके। महादेवी की प्रतिक्रिया एक नारी की तरह घर की सीमा में ही हुई, परंतु उनकी भी आरंभिक रचनाओं में जो भावुक असंतोष और तीव्र पीड़ा मिलती है वह अंत तक जाते जाते बौद्धिक परितोष में शमित होने लगी। अपने यहाँ अतृप्ति की प्रधानता थी, बाद में तृप्ति का काल्पनिक आनंद अनुभव किया जाने लगा। इतना होते हुए भी महादेवी को भीतर ही भीतर अपने परिच्छीणता का अनुभव होता रहा। ऊपर ऊपर आनंद और संतोष की फीकी हंसी थी तथा नीचे अपने मन से वे चुपचाप यही कहती थी कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल। उन्हें अपने जलने में संतोष का अनुभव होने लगा। उन्होंने समझ लिया कि उसके अतिरिक्त जीवन की अब और कोई गति नहीं है, इसलिए पीछे वे इस जलने की क्रिया में और किसी भी तरह के बाहरी हस्तक्षेप को वारण करने लगे। जिधर वह जा रही हैं उधर जाएं, कोई क्यों रोके, कोई दया क्यों दिखाए, जो होना है वह हो ले, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। अब सांसों के समाधि सा जीवन हो गया है, कोई रास्ता नहीं सूझता, मत्स्य सागर सा पंथ बन गया। जो दीप पत्थर की कठोर दीवारों से बने हुए मंदिर से गिरा हो, उसका जीवन यदि सांसों की समाधि न हो जाए तो क्या हो? यदि उसकी प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों के बीच न खो गया होता तो क्या होता? निसंदेह उसने इस निष्करुण मंदिर में अनेक मधुर गीत गाए, लेकिन जड़ देवता पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन सबके उत्तर में बस विहसा उपल तिमिर था खेला। उस दीप ने देखा कि उसकी आंखों के सामने ही न जाने कितने भक्त आए और अपने प्रणत शिरों से चंदन की देहली पर अंक छोड़कर चले गए। वरदान की आशा से झरे सुवन बिखरे छत्सित और आशाओं की यह विफलता देखकर उसे विश्वास हो गया कि इसी तरह तम में सब होंगे अंतर्हित। जो इतने भक्तों की विफलताओं का साक्षी रहा, वह स्वयं उस दीप का मन उन सबकी व्यथा तथा अपनी व्यथा से कितना व्यथित हो उठा होगा, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। इतने पर भी उसमें सुबह तक इसी तरह जलते रहने का आत्मसंकल्प है। उसे अपने जलते हुए जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता यही प्रतीत होती है। जब तक जागे दिन की हलचल, तब तक यह जागेगा प्रतिफल। जब दिन की हलचल जागेगी तो पता नहीं इतनी आत्माओं की समाधि सरीखे उस मंदिर की क्या गति होगी। परंतु इस बीच वह मंदिर के आंगन का जो शून्य है, उसे ही गलाने की चेष्टा करना चाहता है। स्वयं तो उस मोमी दीपक को गलना ही है, इसलिए वह उस गलने को सार्थक करने के लिए वह अपने साथ साथ उस अजीर का शून्य भी गलाना चाहता है। आखिर वह क्या करे? इतने पुराने मंदिर के पत्थर को वह अकेला दीपक गला नहीं सकता, इसलिए वह लाचार होकर शून्य को ही गला रहा है। एक पीढ़ी की समाप्ति और दूसरे पीढ़ी के आने के बीच का जो अवकाश है, उसे अपनी छीड़ी ज्योति से वह भरना चाहता है। इसी अजीर का शून्य गलाने को गलने दो। यही वह उदात्त भाव है जो महादेवी के परवर्ती गीतों में भी इतनी गहरी पीड़ा उत्पन्न करता है। इसीलिए महादेवी के अंतिम गीत भी यथार्थ का गहरा पुट लिए हुए हैं। प्रसाद और पंथ की तरह उनमें आदर्श अथवा सुखद लोक में पलायन करने की भावना नहीं है। भारतीय नारी आखिर भाग कर जा ही कहाँ सकती है, फिर भी आरंभिक गीतों की तीखी अतृप्ति में जो तड़प और ताजगी है वह अंतिम गीतों के मंथर और साथ में नहीं मिलती। पदावली और वाक्य रचना पर यह अवसाद हावी हो गया है। पहले के गीतों में जो चोट है वह तो कभी की गायब हो गई। इस तरह जिस काव्यधारा का आरंभ व्यक्तित्व के विकास की आकांक्षा से हुआ था उसका पर्यवसान समाज निरपेक्ष वैयक्तिकता में हुआ। इस निराशा ने समूचे काव्य में एक प्रकार की कटुता भर दी। पूरी कविता का स्वर इसकी वजह से गिर गया। उस निराशा पर विजय प्राप्त करने के लिए जिन कल्पनाशील कवियों ने फिर से आदर्शों का स्वप्नलोक निर्मित करना चाहा, उन्होंने मोहक जाल को तैयार किया, परंतु उस कल्पनालोक में वह सौंदर्य और सुषमा न आ सकी जो आरंभिक दिनों में कल्पना के लोक में थी। पंथ की ज्योत्सना और अप्सरा ऐसे ही समय की रचना है। अप्सरा का सारा काल्पनिक सौंदर्य निसार मालूम होता है। यदि उसे पल्लवकालीन स्वप्न से मिलाकर देखें तो मालूम होगा कि स्वप्न में जो सजीव सुषमा है उसका शतांश भी अप्सरा में नहीं है। इसमें भाव चित्र जगाने की वह क्षमता नहीं। कल्पनाओं के विस्तृत सूचीपत्र के बावजूद अप्सरा एक ठूंठ रचना मालूम होती है। स्वप्न एक वस्तु है, स्वप्न का अभिनय करना बिल्कुल दूसरी वस्तु और इन दोनों से बदतर है भ्रम अथवा आत्म प्रमंचना की स्थिति। यदि कोई कल्पनाजीवी अपने प्रति सतर्क नहीं है तो उसकी कल्पना उसे ऐसे ही भौजाल में ले जाएगी। खेद है कि पंथ के परवर्ती स्वप्न ऐसे ही आत्मवंचना मूलक भ्रम है। निसंदेह उन्होंने अपनी समझ से बड़ी ईमानदारी के साथ उन स्वप्नों का लोक बसाया, लेकिन वे स्वप्न उन्हें धोखा दे गए। ज्योत्सना नाटिका में बहुत ऊंचे मानवतावादी आदर्श की स्थापना की गई है। संसार के आर्थिक विषमता की आलोचना भी खूब कसकर की गई है। इस नाटिका में पवन सुरभि ज्योत्सना आदि प्राकृतिक शक्तियाँ अपना सूक्ष्म शरीर धारण करके आती हैं और फिर संसार की समस्याओं का समाधान ढूंढती हैं। प्राकृतिक शक्तियों को पात्र बनाकर ही पंत ने अपना मत प्रकट कर दिया है कि मानव की समस्याओं का हल प्रकृति से ही संभव है। परंतु इस धारणा के पीछे वैज्ञानिक विकास का विरोध भी छिपा हुआ है। आरंभिक प्रकृति प्रेम अथवा मोह का अंत भी अब तक नहीं हो सका था। मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर जो आधुनिक सभ्यता की नींव रखी थी उसे प्रकृति मुग्ध कवि घातक समझते थे। उनका मानना था कि आधुनिक सामाजिक विषमता का कारण प्रकृति का क्षोभ और शाप है। कामायनी में प्रसाद ने यही मत प्रकट किया है। मशीन विरोधी गांधी के भी ऐसे ही विचार थे। आगे चलकर पंत आधुनिक कवि के पर्यालोचन में इस प्राकृतिक दर्शन की त्रुटि स्वीकार करते हुए कहते हैं कि एनोटेड कामा, प्राकृतिक दर्शन जो एक निष्क्रियता की हद तक सहिष्णुता प्रदान करता है और एक प्रकार से प्रकृति को सर्वशक्तिमयी मानकर उसके प्रति आत्मसमर्पण सिखलाता है, वह सामाजिक जीवन के लिए स्वास्थ्यकर नहीं है। इनोटेड कामबंद। परंतु यह विचार तो पंत को बाद में सूझा। ज्योत्सना का आदर्शवाद कितना अशक्त और खोखला है यह उस नाटिका के खोखलेपन से प्रकट है। खोखले विचार पर ठोस रचना नहीं हो सकती। ज्योत्सना के पात्र तो वायवी हैं ही, उनकी बातचीत भी वायवी है, इसीलिए सब कुछ मिलाकर उसका प्रभाव भी वायवी है। वह नाटिका नहीं एक लंबा निबंध है, नाटक के रूप में वह एक लंबी बहस है, इसीलिए वह रचना मन में कोई चित्र नहीं छोड़ती। अपनी वास्तविक स्थिति को भूलकर ऊपर ऊपर से आदर्शों का अवलेप करने से कोई लाभ नहीं होता, ज्योत्सना इसका प्रमाण है। इसका मतलब है कि उन सामाजिक आदर्शों और आशा के सुनहरे सपने देखने के बावजूद पंत वस्तुतः समाज निरपेक्ष थे। यही है छायावाद का अंतिम व्यक्तिवाद। समाज से व्यक्ति के कट जाने और कल्पनाजीवी होने का अवसर कविता के रूप विन्यास पर भी पड़ा। गुंजन की अधिकांश कविताओं में वह चित्रमयता नहीं रही जिसके लिए पंत प्रसिद्ध थे। भाववादी दृष्टिकोण की अति का ही यह परिणाम था। सूक्ष्मता का आग्रह इतना अधिक हो गया था कि चांदनी को लघु परिमल का घन कहते कहते अंत में उन्हें यहाँ तक कहना पड़ा कि वह है, वह नहीं अनिर्वच। उनकी दृष्टि में वस्तु जगत एकदम ओझल हो गया। आंखें सब कुछ पार करके स्वर्गातिशय सत्ता के सूक्ष्म लोक में भटकने लगी और जब उस आकाश से नीचे उतरती तो फिर अंतर्मुख हो रहती। गुंजन की बहुत सी चिंतन परक कविताएं इसी मन स्थिति की। काव्य की दृष्टि से सुख दुख वाली उन सुक्तियों का क्या महत्व है यह कहने की आवश्यकता नहीं। पंत ने स्वीकार किया कि इन रचनाओं में हार्दिकता की कमी। आधुनिक कवि के पर्यालोचन में वे कहते हैं, इनोटेड कामा, यदि मेरा हृदय अपने युग में बरते जाने वाले आदर्शों के प्रति विश्वास न खो बैठता तो मेरी आगे की रचनाओं में भी हार्दिकता पर्याप्त मात्रा में मिलती। इनोटेड कामा बंद। उन्होंने ठीक ही लिखा है कि इनोटेड कामा, जब वस्तु जगत के जीवन से हृदय को भोजन अथवा भावना की उद्दीप्ति नहीं मिलती तब हृदय का सोनापन बुद्धि के पास सहायता मांगने के लिए पुकार भेजता है। इनोटेड कामा बंद। वस्तु जगत से खुराक न लेने पर पंत स्वभावतः शुष्क बौद्धिकता के जकड़ में आ गए। नौका विहार कविता कांत इसी बौद्धिकता का परिणाम है, जिसके कारण उतनी अच्छी कविता चौपट हो गई। समाज से कटने के माने हैं कविता के विषय वस्तु से कटना और विषय वस्तु से रिक्त हो जाने पर कविता के रूप की जो दशा होती है वह छायावाद की परवर्ती रचनाओं की हुई है। इन कारणों से छायावाद ने एक ओर अपना ऐतिहासिक कार्य इतनी जल्दी समाप्त किया और दूसरी ओर उसके गर्भ से प्रकृतिवाद के नवीन जीवंत काव्य का जन्म हुआ।